प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 11 फरवरी 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही दोस्तों मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं ओंकार भट्ट जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, आदित्य कुमार जो बक्सर बिहार से हैं और मोहित धारीवाल जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं। तो ओंकार, आदित्य और मोहित आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब हमेशा की तरह हम अपने नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं और वो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। और खासकर मेरे पास जितने भी मेल आते हैं मैंने देखा है कि उसमें सबसे ज्यादा मेल लाइफ मैनेजमेंट के बारे में होते हैं। डेफिनेटली मुझे यह देखकर यह पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट इस रूप में तो अच्छा लगता ही है कि जो लाइफ मैनेजमेंट में जो भी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन सबको आप सीरियसली ले रहे हैं और उन सबका आपके आपके परिवार के लोगों के जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी है। निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए बहुत संतोष की बात है। मित्रों, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने मेल में खासकर जो AIR न्यूज की जो एनालिसिस होती है, प्रेस क्लिपिंग्स के बारे में हम लोग जो बातें करते हैं या परीक्षा की तैयारी कैसे की जानी चाहिए इसके बारे में भी बीच बीच में निर्देश दिए जाते हैं, डिस्कशन होता है, उन पर भी अपने कमेंट भेजें। क्योंकि ये जो 30-35 मिनट का जो डेली ऑडियो है इसका कंपोजिशन, इसकी बनावट कुछ इस तरीके से है कि वो आपके संपूर्ण जीवन को लेकर के चलती है। और डेफिनेटली अभी आप सब नौजवान साथी जीवन के जिस दौर में हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसमें एक आर्थिक आधार हासिल कर पाना एक बहुत बड़ी बात है। और जो AIR न्यूज, प्रेस क्लिपिंग्स या परीक्षा की तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी करने संबंधी जो हम लोग बातें करते हैं वो उसी आर्थिक आधार को हासिल करने की दिशा में उठाया गया कदम है। निश्चित रूप से मित्रों, मैं बात तो सिविल सर्विस के ही संदर्भ को लेकर के करता हूं, लेकिन आप मानकर चलिए कि यदि आप इन बातों को लेकर चलते हैं तो जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। ये जो हिस्सा है AIR न्यूज और प्रेस क्लिपिंग्स का, ये आपको आर्थिक आधार प्रदान करेगा। और जो लाइफ मैनेजमेंट वाला हिस्सा है वो डेफिनेटली आपके जीवन को एक बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत अच्छा फाउंडेशन उपलब्ध कराएगा, इसमें कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं है। तो मित्रों, एक बार आप फिर सभी का स्वागत है। और आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं वो बहुत ही मजेदार बात है और उसका संबंध लाइफ के साथ साथ आपकी सिविल सर्विस की तैयारी से भी है। मित्रों, आज सुबह जब मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूं, सुबह कर रहा था, तो उसी समय मेरी पत्नी टीवी पर सुधांशु महाराज का प्रोग्राम देख रही थी। सुबह का वक्त था। सुधांशु जी ने दो लाइनें कही और वो मुझे अंदर तक छू गई और मुझे लगा कि मुझे भी ये दो लाइनें उनसे उधार लेकर के आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए और आज मैं इन्हीं दो लाइनों पर बात करूंगा। उन्होंने दो लाइनें कही थी कि जो खुद से जुदा हो जाता है खुदा की कसम वो खुदा हो जाता है। मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि लाइनें बड़ी प्यारी हैं, शब्दों का देखिए कि कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। मित्रों, ये कहने का अंदाज है और अगर आपके पास कहने का अंदाज बेहतर हो जाता है तो मान करके चलिए कि आप अपनी जिंदगी में उतने ही सफल होते हैं और फिर सिविल सर्विस में भी उतने ही सफल होते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, हमारे दिल में क्या है, किसी को पता नहीं लगता। वो तभी पता चलता है जब हम बोलते हैं और ये बोलना ही कहने का अंदाज होता है। जितने खूबसूरत और अच्छे तरीके से हम बोलते हैं, अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं सामने वाले पर, उसका उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। आप किसी को गाली गलौज दे करके सोचे कि बदले में वो आपको रबड़ी और जलेबी खिलाएगा तो यह बहुत मुश्किल काम है। क्या आप खुद ऐसा करेंगे कि आपको कोई बहुत डांट डपट करे, गाली गलौज करे और आप बदले में उसे रबड़ी और जलेबी का प्याला पकड़ा दें? ऐसा होता ही नहीं है मित्रों। तो कहने का अंदाज एक बार फिर से देखिए, जो खुद से जुदा हो जाता है खुदा की कसम वो खुदा हो जाता है। दोस्तों कितनी खूबसूरत लाइन है, उन्होंने इसकी व्याख्या आध्यात्म क्षेत्र में या जीवन के क्षेत्र में अपने ढंग से उन्होंने की थी। बहुत सिंपल सी बात है, खुद से जुदा हो जाना क्या है? खुद से जुदा हो जाने का मतलब अपने से अलग हो जाना नहीं है। ये जिसे कबीर दास ने कहा था, तू तू करता तू भया मुझ में रही न मैं। ये जो मैं है, जो खुद है दोस्तों, ये बेसिकली हमारा ईगो है। खुद से जुदा हो जाने का मतलब है अपने ईगो को खत्म कर देना, अदरवाइज हम खुद से जुदा नहीं हो पाते। हमको जब तक इस बात का एहसास रहेगा कि मैं ये हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं धनी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं इस जाति का हूं, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं ये नौकरी कर रहा हूं, पता नहीं मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं स्मार्ट हूं, पता नहीं दोस्तों, ईगो के 1,000, 1,00,000 पता नहीं करोड़ों कारण होते हैं। ईगो के लिए जरूरी नहीं है कि वो चीजें आपके पास हो ही, अगर हैं तब तो ईगो करना मुझे लगता है कि कुछ सीमा तक जस्टिफाई हो सकता है, अदरवाइज हालांकि वो जस्टिफाई होता ही नहीं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि भैया आप महाज्ञानी हैं तो आपको ये ईगो है कि मैं ज्ञानी हूं, तो मान लेते हैं। अगर नहीं आपको लगता है ज्ञानी होने के बाद भी कि मैं ज्ञानी महाज्ञानी हूं, तो बहुत अच्छी बात है, तो पूजनीय बात है, फिर तो आपके प्रति श्रद्धा पैदा होगी। लेकिन चलिए आप ज्ञानी हैं और खुद को ज्ञानी मान रहे हैं तो लोग सम्मान करेंगे, सब श्रद्धा भले ही न करें ले सम्मान तो करेंगे ही, क्योंकि वो सच है। लेकिन यहां तो मुश्किल यह है ना कि लोग होते नहीं हैं और मानते रहते हैं, दूसरे नहीं मानते, वो खुद ही मानते रहते हैं। तो यहां उन्होंने जो कहा है, जो खुद से जुदा हो जाता है, मतलब जो अपने ईगो को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है, नष्ट कर देता है, तो नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? खुदा की कसम वो खुदा हो जाता है, फिर वह अपने आप में ईश्वर ही बन जाता है, फिर उसे ईश्वर तक पहुंचना नहीं है, वो यात्रा उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो खुद ही ईश्वर हो गया, खुद ही मंजिल बन गया, अपने आप में मंजिल बन गया है। यानी कि हमारे जीवन के मार्ग में, हमारी सफलता के मार्ग में या हमारे अध्यात्म के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो यही है मित्रों, कि हम अपने आप के प्रति इतने अधिक सम्मोहित हैं, इतने अधिक सम्मोहित हैं कि उससे अलग हो ही नहीं पाते। हिंदी लिटरेचर में एक नायिकाओं के भेद आते हैं कि किस किस तरीके की नायिकाएं होती हैं, और यदि भोपाल के स्टूडेंट अभी 26 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक रविंद्र भवन में जो लोक रंग का प्रोग्राम हुआ था, यदि उस लोक रंग के प्रोग्राम में वो गए होंगे तो वहां एक एग्जीबिशन भी लगी हुई थी, और वो उस एग्जीबिशन में नायिका भेद के बारे में ही बताया गया था कि नायिकाएं कितने तरीके की होती हैं। उसमें एक नायिका होती है आत्ममुग्धा नायिका। उस आत्ममुग्धा नायिका की विशेषता यह होती है कि वो दर्पण में अपने आप को देखती है और देखने के बाद अपने आप पर खुद ही मुग्ध होती रहती है, खुद ही रीझती रहती है, अपने आप पर ही रीझती रहती है। सच पूछे तो हम सब की स्थिति लगभग लगभग यही है, हम अपने आप पर ही रीझते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं। मित्रों अगर हम इतने भरे हुए हैं तो बात खत्म हो गई, गुंजाइश तो वहां होती है जहां खाली होता है। और मजेदार बात यह है कि जो भरा हुआ होता है वही समझता है कि मैं खाली हूं, जो खाली है वो तो भरा हुआ ही समझता है। जैसे गुब्बारा, गुब्बारे को आप फुला दीजिए तो गुब्बारा भरा हुआ दिखाई देगा, फूला हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो अंदर से क्या है? खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भरा हुआ है, आप अब उसमें कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि वो मान करके ही चल रहा है कि वो भरा हुआ है। मित्रों अपने को खाली समझना, खाली रखना नहीं, खाली तो आप रख ही नहीं सकते, लगातार इसमें चीजें डलती रहती हैं, लेकिन अपने को खाली समझना मनोविज्ञान की, अध्यात्म की, जीवन की एक बहुत बहुत ही सुंदर स्थिति होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत स्थिति। जब आप अपने आप को खाली समझने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में कितनी शांति महसूस होती है, आपको कितना सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, अंदर एक सूदिंग सी फीलिंग होती है। नहीं तो अपने को बहुत हूं मैं, बहुत हूं मैं, बहुत हूं मैं, बहुत हूं, आप सोच करके देखें कि आपको नहीं लगता कि ये सब अपने दिमाग पर जो आदमी लाद करके चलेगा उसका दिमाग कितना वजनी हो जाएगा, कितना बोझिल हो जाएगा, उसको ये सब ये बोझ बर्दाश्त कैसे होता है। अपने को बहुत मानना, अपने को ही सब कुछ मानना, और यही स्थिति फिर बाद में आपको वहां पहुंचा देती जब आप दूसरे को कुछ नहीं मानते, दूसरों को रिजेक्ट करने लगते हैं। नहीं नहीं ये क्या है, फालतू है, ये फालतू है, ये फालतू है। मित्रों, मुझे लगता है कि हमारी स्थिति ऐसी हो, इसके खिलाफ लगातार हमें अंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, लगातार सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हम इस स्थिति में तो नहीं पहुंच रहे हैं। मित्रों, मैंने कहा था कि इसी को हम सिविल सर्विस की तैयारी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। खुद से जुदा कैसे होंगे? देखिए फ्रेंड्स, आप जनरल स्टडीज के जब क्वेश्चन पेपर उठाएंगे मेंस के, तो आप देखेंगे कि मेंस के हर ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपकी अपनी राय मांगी जाती है कि इस बारे में आपके विचार क्या हैं, या इसके बारे में तर्क प्रस्तुत कीजिए, इसके विपक्ष में अपनी बातें रखिए। यानी कि आप उस इश्यू के बारे में, उस मामले पर क्या सोचते हैं आप बताइए, राइट? ये पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, सांप्रदायिक समस्या की बात है, गरीबी की बात है, नारी अधिकार की बात है, रिजर्वेशन की बात है, पॉलिटिक्स की बात है, ऐसे बहुत सारे जितने भी इस तरह के मामले होते हैं उन सब पर हम सब की अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। और ये जो हमारी अपनी धारणाएं होती हैं, आप कभी भी इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा कि हमारी धारणाएं तटस्थ नहीं होती हैं, उन धारणाओं में हम शामिल होते हैं। जैसे रिजर्वेशन की आप बात कीजिए, तो ईमानदारी से अगर पांच लोग बैठ करके बात करें तो आप देखेंगे कि रिजर्वेशन की बात तो रिजर्वेशन के नजरिए से नहीं करेंगे, वो देश और समाज के नजरिए से नहीं करेंगे, उसमें उनका अपना हित शामिल हो जाएगा। यानी कि जिसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है वो उसके विरोध में बोलेगा, और जिसको फायदा मिल रहा है वो उसके पक्ष में बोलेगा। अनजाने में ही हमारे साथ ऐसा होता है। अब सवाल यह है कि उत्तर लिखते समय आप कैसे अपने खुद की इन धारणाओं से खुद को अलग कर पाते हैं, यह एक चुनौती है कि वहां आपको अपनी धारणाओं को आरोपित नहीं करना है। याद रखिए कि परीक्षा में तो यह पूछा जाता है कि इस पर अपने विचार लिखिए, और वो विचार वही हैं जो आपकी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन आपको यह भी मान कर चलना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आप जिस पर्पज से परीक्षा में बैठे हैं वो पर्पज है सिविल सर्वेंट बनना, सरकारी नौकरी में जाना, राइट? तो सरकारी नौकरी में कैसे लोगों को जाना चाहिए, जो तटस्थ हो, जो बायस्ड न हो, जो जरूरत को समझे, देश और समाज और दूसरे लोगों की जरूरत को समझे। वहां ऐसे डिक्टेटर नहीं चाहिए, वैचारिक स्तर के हिटलर वहां नहीं चाहिए जो केवल अपने ही विचारों को देश पर, समाज पर, दूसरों पर थोपे कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सच है। सिविल सर्वेंट का जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, ऐसा होना चाहिए समुद्र की तरह, जहां पर हजारों नदियां आ रही हैं, सैकड़ों नदियां आ रही हैं, मिल रही हैं, उनका पानी उसमें मिलता चला जा रहा है और समुद्र को इस बात का पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पानी कहां से आया। बस वो तो ये जानता है कि मेरे पास पानी है और भरा हुआ है समुद्र, इसके बावजूद खाली है। डाल करके देखिए ना कितना पानी आप डालते हैं समुद्र में। कभी सुना है कि समुद्र में बाढ़ आई है? आ ही नहीं सकती। समुद्र कभी खाली भी नहीं रहता, भरा हुआ रहता है। इसके बावजूद कभी भरा हुआ नहीं रहता, हमेशा खाली रहता है। क्या आपको ये बात कुछ विचित्र सी नहीं लग रही है? कुछ मेरी बात भूलभुलैया जैसी, पहेली जैसी मालूम नहीं पड़ रही है? लेकिन मित्रों, ये सच है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जो प्रिय श्रोता हैं वो मेरे कही गई बातों को ज्यों का त्यों नहीं लेंगे, बल्कि उन पर विचार करेंगे, और विचार करने के बाद अगर उनको कुछ उसमें से बेहतर लगता है उसे लेंगे, बाकी चीजें वो छोड़ सकते हैं। यहां मित्रों, मैं एक बात आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि कल मैंने अपने हमारे जो लांस नायक हैं हनुमंथप्पा जी के बारे में बात की थी, और मैंने विल पावर का वहां जिक्र किया था। विल पावर, मुझे लगता है कि ये विल पावर एक ऐसा इश्यू है जो इस साल जो 2016 की जो सिविल सर्विस का जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसके फोर्थ पेपर में हो सकता है कि विल पावर के बारे में पूछ लिया जाए। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस टॉपिक पर थोड़ी सी अच्छी सी तैयारी कर लें। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्टेज पर जो AIR न्यूज का स्टेज है, और ये बड़ा खूबसूरत स्टेज होता है। खूबसूरत स्टेज इस मायने में फ्रेंड्स कि रोज आप देश और दुनिया की नई नई घटनाएं सुनते हैं और सच पूछे तो न्यूज सुनने के बाद और सुबह अखबार पढ़ने के बाद लगभग मुझे तो इस बात का एहसास होता है जैसे कि मेरे दिमाग ने स्नान कर लिया हो। सुबह नहाने पर शरीर फ्रेश होता है और न्यूज सुनने और अखबार पढ़ने के बाद कहीं न कहीं दिमाग फ्रेश हो जाता है और एक अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। कॉन्फिडेंस ये कि हम अपने समय से रूबरू हो रहे हैं, अपने देश और दुनिया के बारे में हमारी जानकारियां बढ़ रही हैं और इन जानकारियों का अर्थ मित्रों केवल सिविल सर्विस की तैयारी से नहीं है। ज्यादातर हम भारतीय उसको इसी रूप में सोचते हैं कि न्यूज से मुझे क्या लेना है। हम नहीं जान पाते कि जिंदगी का चाहे कोई भी पक्ष क्यों न हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपने समय के प्रति अवेयर हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत 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 बड़ा रोल होता है। जो डिसीजन मेकिंग होती है मित्रों वो कभी अपने समय से परे नहीं होती। अगर आपका कोई भी डिसीजन आपकी अपनी इच्छाओं की प्रबलता के कारण लिया गया है और समय को आपने इग्नोर कर दिया है तो याद रखिए कि चाहे वह आपकी कितनी भी प्रबल इच्छा क्यों ना हो, आपका वह डिसीजन गलत हो जाएगा। इसीलिए आज मैं पहली बार अपने सभी प्रिय श्रोताओं से इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि वो न्यूज और न्यूज पेपर की रीडिंग को केवल सिविल सर्विस या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने तक महदूद न करें, वहां तक सीमित न रखें। ये बहुत ही व्यापक चीज है, ये बहुत ही हमारी सोच को गहराई देती है, हमारे विजन को एक्सपेंड करती है और इस तरीके से जो हमारी सोच को गहराई और एक्सपेंशन मिलता है उससे हमें डिसीजन लेने में बेहद मदद मिलती है और हमारे ज्यादातर डिसीजंस के सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मित्रों जब आप इसको इस तरीके से लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए ही जो आप न्यूज सुन रहे हैं उससे थोड़े से उबाऊपन को आप कम कर सकेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी बीच बीच में मेरे पास थोड़े से अंतराल के बाद या कभी कभी कंटिन्यू भी इस तरह के मेल आ जाते हैं कि ये जो ऑडियो गाइडेंस में जो चीजें हो रही हैं कुछ स्टीरियो टाइप की हैं। अब पता नहीं जो भी अपनी ये बात रखते हैं उनका अपना नजरिया है और अपने नजरिए से सही हो सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि स्टीरियो टाइप कैसे हो सकता है। फिर तो पूरी जिंदगी स्टीरियो टाइप है। सूरज का रोज निकलते हुए देखना स्टीरियो टाइप है, रोज खाना खाना आपको नहीं लगता कि स्टीरियो टाइप है, फिर रोज रात में सो जाइए वो भी स्टीरियो टाइप है, फिर तो हर चीज स्टीरियो टाइप है। अगर एक सिविल सर्विस की तैयारी कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसके लिए न्यूज रोज सुनना, अखबार रोज पढ़ना, रोज उसकी एनालिसिस करना स्टीरियोटाइप कैसे हो सकता है, और वो भी तब जबकि आप जो करंट अफेयर्स का जो हिस्सा है केवल न्यूज और न्यूज़पेपर्स आपकी तैयारी का दोस्तों आप कभी बहुत बहुत प्रेम से शांति के साथ तटस्थ होकर पूरी गंभीरता से जो भी आपका सिलेबस है और क्वेश्चन पेपर स्पेशली सिलेबस को छोड़ दीजिए आप क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस कीजिए, आप देखकर दंग रह जाएंगे कि 75% तैयारी आपकी सिर्फ इसी से हो रही है। 75% मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूं, आपको मिसगाइड करने से मुझे क्या मिलेगा, आप कभी इसको करके देखिए, मेरी बात को मत मानिए, मेरी बात पर 100% यकीन मत कीजिए, केवल आप इसे एक अनुरोध मान लीजिए कि सर ने ऐसा कहा है तो चलो उन्होंने ऐसा कहा है तो हम करके देख लेते हैं, करके देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे बता दीजिए, नहीं मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको उसी तरह से इस्तेमाल कीजिए, और अगर गलत लगता है तो फिर मुझे जरूर बताइए ताकि मैं अपने को करेक्ट कर सकूं। तो मित्रों ये मैं आपको उस मनोवैज्ञानिक स्थिति पर खासकर ले जाना चाहता हूं जिसकी अभी मैंने लाइफ मैनेजमेंट में बात की है कि जो खुद से जुदा हो जाता है। आप अपने दिमाग की स्थिति को अगर सही स्थान पर ले आते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज आपको उबाऊ लग ही नहीं सकती, कोई भी चीज आपको स्टूडियो टाइप की नीरस लग ही नहीं सकती, हर दिन आपको उसमें एक नया रस मिलेगा। स्टीरियो टाइप तो तब होगा जब एक ही न्यूज रोज आप सुन रहे हैं, रोज वही प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट और एक ही जैसा स्टेटमेंट। अगर आप प्रधानमंत्री को भी रोज सुन रहे हैं लेकिन रोज उनके स्टेटमेंट नए नए हैं तो वो नीरस कैसे हो सकता है, वो अलग अलग मतलब वो सच पूछे तो स्टीरियोटाइप कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग है। तो इसको जब आप एक बार समझ लेंगे और आत्मसात कर लेंगे और अपने दिमाग में रचा बसा लेंगे, तो आप देखेंगे मित्रों की रोज आपको न्यूज सुनना कितना मजेदार लगना पड़ेगा लगने लगेगा, अखबार पढ़ना भी आपको मजेदार लगना लगेगा, और हो सकता है कि फिर शायद मेरे इस डेली ऑडियो को भी आप सुनना पसंद करने लगे। तो सिविल सर्विस की तैयारी फ्रेंड्स चूंकि एक लंबी तैयारी है, एक व्यापक तैयारी है, आसान तो नहीं है। ठीक है, मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि बहुत कठिन नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत आसान है, आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति को बेहतर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसके साथ इतनी लंबी दोस्ती निभा पाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद हम ऊबने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, ये लगने लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है, और उसके कारण हम खुद होते हैं। सच पूछिए तो ना तो सिविल सर्विस होती है, ना सिविल सर्विस का सिलेबस होता है, और ना सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, और ना सिविल सर्विस के पूरे सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं हम खुद ही होते हैं। तो मित्रों इस थोड़ी सी चर्चा के बाद मैं अब न्यूज पर आता हूं। कल की आकाशवाणी में दो ही केवल महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक खबर जो सबसे पहली खबर थी केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है मित्रों। हालांकि जब आपने न्यूज में सुना होगा तो उसमें आपको सीधे सीधे इसके लिए कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जो बातें कही गई हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और खासकर सिविल सर्विस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि हेडलाइन ही थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है सभी राज्यपालों से, राज्यपालों का जो सम्मेलन दो दिन का राष्ट्रपति भवन में चल रहा था, के बारे में कल हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा भी की थी, और वहां उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया कि टीम इंडिया की तरह काम करना चाहिए, केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की तरह काम करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बड़ी खासियत है कि वो जो शब्दों का चयन करते हैं, शब्दों के चयन उनके बड़े खूबसूरत होते हैं, और खासकर अभी आधुनिक समय में जो भाषा चल रही है, जो शब्द चल रहे हैं, जो बोलचाल की शैली चल रही है, उनमें से वो चीजें लेकर के आते हैं। तो यहां उन्होंने टीम इंडिया की बात कही, जो खासकर क्रिकेट वगैरह में आपने देखा है कि अक्सर इस शैली का प्रयोग होता है। इसके बाद आप देखिए कि उसमें दो तीन बातें उस पूरे के पूरे न्यूज आइटम में थी, मैं उधर आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, खासकर तैयारी करने की शैली पर। एक तो टीम इंडिया, इस टीम इंडिया में कौन है? केंद्र और राज्य, मतलब केंद्र और राज्य आपस में तालमेल बिठाकर चलें, और साथ ही साथ राज्य भी आपस में तालमेल बिठाकर चलें, और इस तरीके से एक टीम इंडिया बने ताकि हम जीत हासिल कर पाएं, चाहे वो आर्थिक विकास की दौड़ हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा की दौड़ हो, चाहे विश्व में अपना स्थान बनाने की दौड़ हो, उसमें हम एक टीम इंडिया की तरह काम करें उसके लिए और जीत हासिल करें। फिर उसमें एक शब्द था, उसी में आया कि एक्ट ईस्ट नीति, खासकर जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो राज्यपाल उसमें आए हुए थे उनको संबोधित करते उन्होंने कहा कि जो हमारा एक्ट ईस्ट नीति है भारत सरकार की, यानी कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, जो अभी तक मतलब विकास की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से पीछे है, उसको अब आगे लाने की लगातार कोशिश हो रही है। और मैंने बताया भी कि कल ही मैंने अपने इस एनालिसिस में बताया था कि केंद्र सरकार ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों में पूर्वोत्तर भारत के लिए ही 1,30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही है, और लगातार इस तरह की खबरें पूर्वोत्तर भारत के लिए आती रहती हैं। तो एक्ट ईस्ट नीति ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एक्ट टीम इंडिया ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, शब्द हो जाता है। फिर आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे एक शब्द का इस्तेमाल किया, सहकारी संघवाद। सहकारी का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव। संघवाद फेडरलिज्म। आपको अगर ध्यान हो तो लगभग मैं समझता हूं शायद 1.5-2 साल पहले, खासकर जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में आया है, और मुझे ध्यान आ रहा है कि केवल सहकारी संघवाद को लेकर ही योजना पत्रिका के हिंदी और इंग्लिश में स्पेशल इश्यू भी निकले हैं। मैं आप लोगों से ये अर्ज करूंगा कि अगर ये इशू आप लोगों को बाजार में मिल जाए तो आप लोग इसे जरूर लें, और हो सकता है कि ये इशू आप में से जो लोग थोड़े से पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके पास हो भी, अदरवाइज ये लाइब्रेरी में भी इसके इशू मिल सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप नॉलेज सेंटर में जाएंगे इस डेली आडियो के afis.com के पुराने उसमें, तो मैंने भी जहां तक मुझे याद है कि चार पांच आर्टिकल हिंदी से और चार पांच आर्टिकल इंग्लिश के योजना से इसी इश्यू पर प्रोवाइड किए हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सहकारी संघवाद, इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के आप देखेंगे कि अक्सर एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है इनके प्रकार किसी न किसी तरीके से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। एक बात और भी प्रधानमंत्री जी ने कही कि राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है मित्रों की जो भरत झुंझुनवाल वाला जो जिनके लेख आप पढ़ते हैं अक्सर मैं प्रोवाइड करता हूं, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लगभग 1-1.5 साल पहले लिखा था, और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि कुछ ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि राज्यों के बीच भी आपसी स्पर्धा हो, आपस में प्रतियोगिता हो कि कौन एक दूसरे से आगे निकल रहा है, कौन ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ला पा रहा है, कौन ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके की एक स्वस्थ प्रतियोगिता, और उन्होंने बल्कि उसमें यह भी लिखा था कि केंद्र सरकार इसके लिए कुछ प्रयास करे कि उनको फिर शील्ड दे रही है और उनको फिर कुछ और इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ ऐसी नीतियां स्थापित करे। तो यहां एक स्वस्थ प्रतियोगिता की बात आई है, तो अब राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता, देखिए इसमें शब्द आया है स्पेशली स्वस्थ, केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में पता लगा कि अब फुटबॉल का मैच चल रहा है और सामने वाले खिलाड़ी को लंगी मार करके गिरा दो और मैच जीत जाओ, नहीं, ये स्वस्थ प्रतियोगिता होना चाहिए, क्योंकि जो भी राज्य है अंततः काम तो राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं और राष्ट्र के ही हिस्से हैं। तो ये जो स्वस्थ प्रतियोगिता राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की है, इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिए। विचार इस तरीके से कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वस्थ प्रतियोगिता अस्वस्थ प्रतियोगिता के में बदल जाए और राज्य ही आपस में झगड़ने लगे, और अगर राज्यों के इस तरह के झगड़े होंगे तो वो किस किस क्षेत्र में हो सकते हैं, क्या क्या झगड़े हो सकते हैं, क्या अभी झगड़े नहीं हो रहे हैं और हो रहे हैं तो किस तरीके के हो रहे हैं, राज्यों में क्या अभी प्रतियोगिता हो रही है और प्रतियोगिता हो रही है तो किस तरीके की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उन प्रतियोगिताओं के क्या परिणाम आ रहे हैं। ये दोस्तों आज मैंने आपको जिसको कहते हैं फूड फॉर थॉट वो प्रोवाइड किया है आप लोगों को विचार करने के लिए, जुगाली दिमाग को जुगाली करने के लिए भोजन उपलब्ध कराया है, इस पर आप लोग विचार करें। मित्रों ये जो दूसरी खबर थी वो खासकर संयुक्त अरब अमीरात के जो शहजादे हैं जो प्रिंस हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, और न्यूज में आपने सुना कुछ बातें आपने सुनी, तो आप न्यूज में किन बातों पर ध्यान देंगे, देखिए मैं आपको इस न्यूज आइटम के माध्यम से केवल ये बताने जा रहा हूं। संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी देश है, और आपने न्यूज में सुना कि भारत के लगभग 70 लाख लोग उस देश में रह रहे हैं, 7 मिलियन, बहुत बड़ी संख्या है, ये छोटी मोटी संख्या नहीं, क्योंकि वो देश ही अपने आप में छोटा सा है, 70 लाख लोग भारतीय रह रहे हैं। फिर आपने न्यूज में ये भी सुना कि अब उनके यहां रहने से फायदा क्या हो रहा है, वहां रहने से फायदा क्या, और ये बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी रकम वहां से विदेशी मुद्रा भारत में भेजते हैं, तो भारत में हमारे पास जो एक विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो बढ़ता है और हमारे देश को आर्थिक विकास करने में भी उनसे मदद मिलती है। ये नहीं कि वो जो पैसा है वो कमा रहे हैं और अपने घर में ही तो रख रहे हैं, वो तो पैसा उनका ही नहीं दोस्त, कोई भी नागरिक अगर संपन्न बनता है, अगर कमाई करता है, तो वही देश की आर्थिक वृद्धि होती है, उसकी अपनी संपत्ति कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संपत्ति ही होती है, अदरवाइज पर कैपिटा इनकम आप किसको कहेंगे, अगर आप एक आदमी को निकाल दें तो क्या पर कैपिटा इनकम होगी, जीवन स्तर फिर आप कैसे नापेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को आप कैसे नापेंगे, वो तो एक सिटीजन की ग्रोथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। ऐसा नहीं है कि कोई देश एक अलग से है और उसके सिटीजन्स अलग से हैं, तो उनके द्वारा भेजा गया जो धन है उससे भारत को बहुत मदद मिलती है। फिर आपने ये भी उसमें न्यूज में सुना कि लगभग 60% जो हमारी एनर्जी की जो जरूरत है वो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश ही पूरा करती है, हमारी एनर्जी की जरूरत को पूरा करती है, इसे आप सोच सकते हैं कि उस राष्ट्र की हमारे लिए कितनी अहमियत है, और नो डाउट कि सुरक्षा की दृष्टि से तो उसकी अहमियत है ही, और आपने देखा कि किस तरह से विज्ञान और स्पेशली सिक्योरिटी के मामले में भी उनके साथ हमारे अभी समझौते होंगे। मित्रों मैं ये तो नहीं कहता कि संयुक्त अरब अमीरात पर कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा, लेकिन ये मैं जरूर आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जब आप न्यूज सुनते हैं तो उस न्यूज को आप इस तरीके से सुनिए कि कहीं कि 15 मिनट की आप बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपका अटेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि न्यूज भी सुन रहे हैं और टीवी भी चल रहा है, न्यूज भी सुन रहे हैं और फोन पर भी बात कर रहे हैं, न्यूज भी सुन रहे हैं और किसी से बतिया भी रहे हैं। ये आपकी एक तरह से सीरियस क्लास की तरह होना चाहिए, जब आप बहुत इत्मीनान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ न्यूज सुन रहे हो। केवल इतना ही कीजिए, जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जो बातें आपने सुन रखी हैं वही एग्जामिनेशन हॉल में याद आकर के जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करेंगी और इतना ही सफिशिएंट होगा, क्योंकि सारी चीजों को नोट करने की जरूरत नहीं होती है। और यदि हम सारी चीजों को नोट करने लगेंगे तो सारी चीजें फिर हमारे लिए बेकार हो जाएंगी, क्योंकि इतना बड़ा भंडार इकट्ठा हो जाएगा कि फिर उनमें से अपने काम की चीज छांटना हमारे लिए मुश्किल होगा, सारी चीजों में घचपच हो जाएगा। तो तैयारी करने का हमारा यह भी एक तरीका होना चाहिए। फ्रेंड्स दो ही केवल खबरें AIR न्यूज में इंपॉर्टेंट थी, अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर। प्रेस क्लिपिंग्स में आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है मित्रों, लेकिन मैं आपको दो प्रेस क्लिपिंग्स के बारे में स्पेशली बताना चाहूंगा जो दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया में से हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट है जिसमें प्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया ने खासकर हमारे बैंकों में जो लोन, एक ऐसा लोन जो बैंक ने दिया था लेकिन अब उसको वापस नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के जो संकट पैदा हो रहा है उसके बारे में लिखा है। देखिए जो बैंक होते हैं, देश किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसके रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर बैंक दिवालिए होंगे तो आप कभी उम्मीद मत कीजिए कि राष्ट्र आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। कल्पना करके देखिए कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उसमें 14% ऑलमोस्ट ऐसा लोन हो गया है जो वापस नहीं मिलना है, जबकि दूसरी ओर जो प्राइवेट बैंक है उनका केवल 4.6% ही लोन ऐसा है जो उनको वापस नहीं मिलना है। 10% का फर्क है, आप सोच करके देखिए। और बैंकों को जो लोन वापस नहीं देने वाले लोग हैं ये कौन है? करोड़पति खरबपति, वो लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है, ये वो है जिन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए पैसा लिया था। अब ये जो बैंकों को लोन नहीं दे रहे हैं तो इसकी पूर्ति कैसे होगी? इसकी पूर्ति हमारे और आपके टैक्स से ही होती है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। तो इसको लेकर के बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसी तरह से नेट न्यूट्रलिटी को लेकर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डेरेक ओब्रेन, उनका आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं वो भी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको देखिएगा। खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है टेलीकॉम को लेकर के, इसको आप इस नजरिए से देखिएगा कि हम किसी चीज को कैसे समझते हैं, या हमें किसी भी टॉपिक को, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, स्पेशली आपके पॉलिटिकल साइंस का हो, तो समझना कैसे चाहिए। आप उस नजरिए से उसको पढ़िएगा कि जो नेट न्यूट्रलिटी की थ्योरी को उन्होंने किस तरीके से उदाहरण दे देकर के बड़े प्यारे ढंग से समझाने की कोशिश की है। और मित्रों मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी जब भी किसी इश्यू को समझना चाहें तो कोशिश कीजिए कि इसी तरह के एग्जाम्पल्स दिमाग में खोज खोज कर लाएं और उसको समझने की कोशिश करें। यहां जो 15 दिन की क्लासेस होती है उसमें होता ही यही है कि किस तरीके से जो बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट की जो बहुत बेसिक जो फाउंडेशंस होते हैं, उनको कैसे आपके दिमाग में समझा समझा करके बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, ताकि आप फिर उससे रिलेटेड कोई भी जब न्यूज आपके सामने आती है तो आप उसे बड़े आराम से आत्मसात कर सकें। तो मित्रों नॉलेज सेंटर में प्रेस क्लिपिंग्स के लिए ही इतना ही, अब मैं आता हूं अंत में ईमेल पर। बहुत से ईमेल आए हैं तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने प्रिय मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, विनय कुमार पांडे इलाहाबाद से हैं, राजीव अरोड़ा लुधियाना से हैं, भावना पांडे, अंकित नारंग, सागर पंसारी राम रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, और मोहित धारीवाल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इसमें राजीव अरोड़ा जो लुधियाना से हैं मित्र, इन्होंने बहुत अच्छा प्यारा मेल लिखा है। राजीव आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है, फिर तब मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।